जब मथुरा भगवान एक बार अपने मित्रों के साथ रोज चराने जाते थे, गोवे चराने जाते थे, तो उस समय एक बार जब गोवे चराने के लिए गए थे, उस समय एक बार वो लोग शायद टिफिन लेकर नहीं गए थे, इसलिए उनको बहुत भूख लग गई थी। तो उन्होंने पास में ही भगवान ने क्या कि अपने परिकरों को कहा कि जाओ और वहां पर ब्राह्मण लोग, कुछ ब्राह्मण लोग है वो यज्ञ आदि कर रहे हैं, तुम यज्ञ आदि करने लगे ब्राह्मणों से हमारे लिए कुछ भोजन मांग लो। उनका यज्ञ समाप्त हो गया तो उनसे कुछ भोजन मांग लेना। तो कृष्ण बलराम का आदेश प्राप्त कर वो जो उनके जो ग्वालवाल थे वे ब्राह्मणों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण लोग, कृष्ण और बलराम हमारे सखा और भगवान श्री भगवान यहाँ पर आए हुए हैं, तो कृपा करके हमें कुछ भोजन चाहिए, वो दोनों भूखे हैं। तो ब्राह्मणों ने कुछ भी उनको सम्मान नहीं किया और मौन रह गए। और वो कृष्ण बलराम के जो साथी थे बार बार वापस लौट आए। इसके बाद ग्वाल बालों ने कहा, भगवान हम नहीं जाएंगे, अभी कृष्ण बलराम हम नहीं जाएंगे, हमारा अपमान हो गया। तो उन्होंने कहा, नहीं, अभी इस बार तुम उनकी पत्नियों के पास चले जाओ, उनकी पत्नी निश्चित वो मुझसे प्रेम करती हैं, निश्चित तुम्हारा सम्मान करेंगी। तो कृष्ण बलराम का आदेश फिर से प्राप्त कर जो ग्वालवाल थे वे कहाँ चले गए, उनकी पत्नियों के पास। तो जैसे ही उन्होंने सुना कि कृष्ण और बलराम आए हुए हैं, तो वे लोग तुरंत अपना सारा कार्य छोड़कर सारा घर का खाना था, भोजन था, वो अपने मटके में डालकर कृष्ण बलराम के पास ले आए। और वहां पर कृष्ण बलराम की कृपा से उनकी चर्चा हुई आपस में, और इस तरह चर्चा करते करते उन्होंने फिर भगवान उनको वापस भेज दिया। और जब वापस भेजा, ये जो ब्राह्मण पत्नियां थी वापस जाना नहीं चाहती थी, कौन जाएगा अगर आपको कृष्ण मिल जाए तो, कृष्ण के पास आ जाने के बाद, कृष्ण चर्चा करने के बात करने के बाद आप वापस आना चाहेंगे? तो भगवान ने कहा, नहीं, इस समय तो वापस चले जाओ। तो उन्होंने कहा कि हम यदि वापस जाएंगे तो हमारे पति हमें स्वीकार नहीं करेंगे, वो सोचेंगे किसी पर पुरुष के पास जाके हमें कोई स्वीकार। तो भगवान ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, ब्राह्मण लोग तुम्हारा उससे ज्यादा सम्मान करेंगे, कि वो लोग तो स्वर्ग प्राप्ति करने के लगे हुए, लेकिन बिना किसी अध्ययन के या बिना किसी कार्य के, बस उन ब्राह्मण पत्नी ने अपना जो उद्देश्य था भगवान को प्राप्त करना, वो उन्होंने कर लिया। तो ब्राह्मण की जो पत्नियां थी वे जब घर लौट गई तो उनके जो पति ने उनका बहुत सम्मान किया, इतना सम्मान किया कि कहा कि हम लोग दुर्भाग्यशाली है कि हमें कृष्ण की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन तुम लोगों ने कृष्ण की प्राप्ति कर ली, कृष्ण मिल गए, कृष्ण ने चर्चा की, और हम लोग ये सोचकर कि ये साधारण मनुष्य है ये जानकर हमने उनका सत्कार नहीं किया। तो ब्राह्मण तो कोई प्रश्न पूछ सकता है कि फिर ब्राह्मण चले गए होंगे दर्शन करने के लिए? बोले नहीं, ब्राह्मण लोग कंस के भय से उन लोग उनका दर्शन करने के लिए नहीं गए। तो ये जब घटना हो गई थी उसके बस कुछ ही दिन, ये इस लीला के कुछ ही दिन बाद कृष्ण बलराम वृंदावन में देखते हैं कि बड़ा विचित्र उत्सव चल रहा है, सब बड़ी बड़ी तैयारियां चल रही है, गांव में एक बड़े महोत्सव की तैयारी हो रही है। जैसे अगर आज हम देख, जैसे मान लीजिए कि इंडिपेंडेंस डे आता है, अगर जैसे दुर्गा पूजा आती है तो घरों में साफ सफाई होती है, दिवाली आती है तो घरों घरों में साफ सफाई होती है, सब पेंटिंग किया जाता है और ताकि घर थोड़ा अच्छा लगे, ताकि हमारे घर पे यदि अतिथि आए तो उनको प्रसन्नता लगे, इस तरह से घरों को सजाया जाता है। तो उसी तरह से इंद्र यज्ञ चलने वाला है, और इंद्र यज्ञ ब्रज का बहुत बड़ा महोत्सव था, बहुत बड़ा, और इसलिए सारे जो लोग थे ब्रज के, जितने सारे लोग थे वे सब इस इंद्र यज्ञ की तैयारी में लगे हुए थे। तो भगवान ने देखा कि कोई यज्ञशाला में यज्ञ कुंड बना रहा है, कोई झाड़ू मार रहा है, तो कोई घरों को पोत रहा है, इस तरह से जब बहुत सारी तैयारियां देखी, तब कृष्ण बलराम, विशेषकर कृष्ण ने विचार किया कि ये क्या हो रहा है। तो भगवान तो सब जानते हैं, लेकिन तो आपस में चर्चा करने लगे अपने मित्रों के साथ, ये सब क्या हो रहा है। तो किसी ने कहा कि इंद्र की पूजा हो रही, इंद्र नाम का कोई देवता, उसकी पूजा चल रही है, ग्वालवाल अपने आप आपस से बात करने लगे। तो भगवान ने देखा कि एक हॉल, बड़े हॉल में सारे जो गांव के जो बड़े बड़े लोग हैं उनकी इष्टा गोष्ठी चल रही है, आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं। तो वे लोग सारे जो ग्वाल बाल मिथ भगवान की ग्वाल बाल मिथ रहते सब लोग जाके उस ईस्टर गोष्ठी जहाँ चल रही थी उस हॉल में जाके खड़े हो गए। अब मान लीजिए जहाँ पर बड़े बड़े लोग मीटिंग कर रहे हैं वहां पर छोटे छोटे बच्चे आ जाए तो कैसे आप लोग उसको जाओ 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 बच्चों घर जाओ घर जाओ। तो उसी तरह से नंद बाबा आदि सब लोगों ने भगवान इत्यादि बच्चों को कहा कि आप लोग घर चले जाइए यहाँ पर आपको कोई काम नहीं है। तो भगवान ने कहा कि पिताजी हमको जानना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पर थोड़े समय तक यहाँ पर रुक जाए हमारे यहाँ पर गांव में बड़ी तैयारी चल रही तो हम जानना चाहते हैं कि तैयारी किस कार्य की तैयारी चल रही। हम जानना चाहते हैं कि ये जो आप कार्य कर रहे हैं इंद्र यज्ञ जो कर रहे हैं क्या ये शास्त्र सम्मत है। देखिए दो तरह के कार्य होते हैं आज हम लोग घरों में भी हमारे घरों में बहुत सारे हम लोग कार्य करते रहते हैं। एक तो लौकिक होते हैं लोक में प्रचलित कार्य होते हैं दूसरे जो शास्त्रों द्वारा लिखे गए। तो भगवान पहला प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि ये किस उद्देश्य से किया जा रहा है इसका क्या कारण है और ये करने से हमें क्या फल मिलेगा और इसको और ये क्या ये शास्त्र सम्मत है ये लौकिक है ये लोक में प्रचलित इसलिए आप लोग कर रहे हैं या ये शास्त्र सम्मत है। तो इस तरह से प्रश्न ने पूछा तो वहां के कुछ लोगों ने कहा कि आप ये बच्चे होते हुए तुमने ऐसा प्रश्न क्यों कर रहे हो। तो भगवान ने कहा देखिए पिताजी यदि आप हमें बताएंगे तभी ना हम जाके आगे करेंगे क्योंकि हमारे हमारे परिवारों में कुल देवता की पूजा होती है या फिर कुछ ऐसे रीति रिवाज होते हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे भी सीखे चाहते हैं ना तो उन बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं कि भैया ऐसा करो जैसे हम अगर हमारे घर में बच्चे तो उनको भगवान के मंदिर में प्रणाम कैसे करना है ये कैसे करना है सब छोटी छोटी चीजें बताया जाते हैं। तो उस तरह से भगवान ने कहा कि मुझे हम लोगों को सीखने की इच्छा है हे प्रभु कि हम लोगों को सीखने की इच्छा है कि आप हमें समझाइए पिताजी यदि आप हमें नहीं बताएंगे तो हम लोग कैसे करेंगे। तो भगवान ने इस तरह करने पर पिताजी ने विचार किया कि ये है तो बच्चा लेकिन बात एकदम बुद्धिमान की कर रहा है। तो नंद महाराज ने विचार किया ठीक है कभी ना कभी तो इनको बताना ही है ठीक है कभी ना कभी तो बताना ही बच्चों को अगर हमारे घर पे अगर कोई रीति रिवाज है तो बच्चों को समझाना है तो कभी ना कभी तो शुरू करना ही पड़ेगा। चलिए आज ही से शुरू कर देते हैं ताकि ये भी भविष्य में जाकर इंद्र की पूजा कर सके। अब भगवान सर्वज्ञ है सर्वव्यापी है सब कुछ जानते हैं यज्ञ क्यों चल रहा है ये भी जानते हैं। अरे जिन्होंने छह दिन के थे जब उन्होंने पुतला का वध कर दिया 3 महीने के थे जब तृणाव्रत का वध कर दिया तो ऐसे कई घटनाएं ऐसे की जिन्होंने भगवान ने अपनी भगवत्ता स्थापित किया। भगवान छोटे से 6 दिन के हो या 125 साल के भगवान तो भगवान है हर स्थिति में हर समय में हर काल में सब परिस्थिति में भगवान भगवान है। तो यहाँ पर भगवान सर्वज्ञ सब कुछ जानते हैं लेकिन फिर भी इस तरह से प्रश्न कर रहे हैं। भगवान को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरे परिकरों से इंद्र पूजा स्वीकार करें कि ब्रजवासियों मेरे परिकर हैं मेरे भक्त हैं और इंद्र एक साधारण देवता होकर मेरे ब्रजवासियों से इंद्र पूजा स्वीकार करेगा इंद्र की इतनी हिम्मत हो गई। तो भगवान वास्तव में इंद्र का मान मर्दन करना चाहते थे इंद्र का घमंड चूर करना चाहते थे इसलिए भगवान ने ये इंद्र को ललकारने के लिए इंद्र को चैलेंज करने के लिए भगवान ने ये प्रश्न पूछा था किसी तरह से भगवान को ये चीज रोकनी थी। श्रीपाद जीव गोस्वामी कहते हैं कि भगवान तो 7 साल के थे जब उन्होंने गोवर्धन धारण लीला की इसका अर्थ है कि पहले के 6 साल भी उन्होंने इंद्र पूजा देखी होगी। तो जो पिछले साल भगवान ने विचार किया था पिछले साल जब 6 साल के थे तभी उन्होंने विचार किया था कि इस बार तो होने दीजिए अगले साल इंद्र की पूजा नहीं होने दूंगा अगले साल इसको रोकना है। वास्तव में भगवान खुद ही श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान खुद ही सबके हृदय में प्रेरणा लेके इंद्र पूजा करवा रहे थे ताकि कभी भविष्य में भगवान को गिरिराज को उठाना था और 7 दिन तक 7 रात तक सारे सब लोगों को एक साथ उनको अपना दर्शन दिलवाना था। इस तरह से भगवान ये विचार करके सबको प्रेरित कर रहे थे कि करो इंद्र पूजा लेकिन अब भगवान ने उसको रोक दिया। अब भगवान पूछते हैं कि इस तरह से प्रश्न भगवान भगवान के सुनने पर नंद महाराज ने कहा कि बेटा जो इंद्र जो है ना वो मेघपति है, उन्हीं से उनके ही जो मेघ है उन्हीं के स्वरूप है, उनसे वर्षा होती है और उसी से हम जो कृषि पर जीने वाले जो लोग हैं उनकी जो खेती बाड़ी जो कर रहे लोग हैं उनका जो धन क्या है खेती। तो उसमें धरती में जो पानी, धरती में जो मीठा पानी है या धरती पर जो धरती जो ये देती है जो धन धान्य देती है वो इंद्र की कृपा से तो मिलता है हमें। इंद्र जब वर्षा करते हैं तो उस वर्षा के कारण धरती फलित होती है और उससे हम लोग जीते हैं। तो जो जो देव जो जो जल देवता है वो इंद्र का ही स्वरूप है। तो यदि इंद्र जल नहीं देंगे, और विचार करो पुत्र कि जिस इंद्र जब वर्षा करते हैं तब हमें ये सब धन मिलता है, खेती बाड़ी में जो हमें गेहूं चावल इत्यादि मिलता है, ये तो इंद्र के द्वारा दी गई वस्तु है। तो हम उसी वस्तु से अगर इंद्र को थोड़ा सा दे दे उससे क्या क्या बिगड़ जाएगा। सही बात है, थोड़ा सा इंद्र की वजह से अगर मिल रहा है तो हम इंद्र को दे रहे हैं। देखो बेटा, जैसे गंगा जी की हम पूजा करते हैं तो गंगा जी का पानी उठाकर गंगा जी में अर्पित करते हैं, तो वैसे इंद्र द्वारा कुछ चीजें मिल रही है तो उसको इंद्र को वापस कर थोड़ा सा दे रहे हैं, उसको क्या क्या बिगड़ जाएगा। और देखो बेटा, ये पूरी परंपरा है, इससे ईर्ष्या मत करना, इससे द्वेष मत करना, और उसको रोकने की तो सोचना भी मत। जो इससे रोकने की विचार करेगा वो क्या होगा, उसका अमंगल होगा, उसको कभी कल्याण नहीं होगा। देखिए हमारे हमारे घर परिवार में भी इस तरह के कई सारे छोटी छोटी चीजें पूजाएं होती रहती हैं जो हम लोग जो शास्त्र में नहीं लिखी होती लेकिन जो लौकिक होती है, कुल परंपरा से चली आती है। तो ऐसे सब ये सब जो पूजाएं हैं घर पे जो भगवान के कृष्ण से संबंधित नहीं है, देवताओं के संबंधित है, उनका खंडन यहाँ पर किया जा रहा है। भगवान किस तरह से खंडन करता है इस चीज का देखेंगे हम लोग, क्योंकि भगवान ये बर्दाश्त नहीं कर सके कि ब्रजवासी जो उनके प्रेमी हैं वो इंद्र की पूजा कर रहे थे। तो इसलिए भगवान ने एक सिद्धांत स्थापित किया, कर्म मीमांसा। कर्म मीमांसा ये वास्तव में ये सिद्धांत तो गलत है, मतलब कर्म मीमांसा, कर्म ही ईश्वर है, कर्म की पूजा करनी चाहिए, कर्म से ही सब कुछ होता है, कर्म ही कर्म सब कर्म की बातें कर रहे थे। लेकिन एक कर्म सिद्धांत भगवान ने इसलिए प्रेजेंट किया, एक ही कारण था, श्रीधर स्वामी कहते हैं एक ही कारण है, ताकि उन लोगों का जो चित्त था, उन लोगों की जो इंद्र की जो पूजा करने की जो मानसिकता थी वो चेंज हो। इस कर्म सिद्धांत को, कर्म मीमांसा फिलोसॉफी को हमें स्वीकार नहीं करना। देखिए फिलोसॉफी ये है कि चाहे जो कुछ भी हो सब कुछ कर्म ही है। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। और अच्छा कर्म करेंगे या बुरा कर्म करेंगे जो भी है, लेकिन उसको देवता कुछ नहीं कर सकता। देवता चाहे तब भी हमारे कर्म को बदल नहीं सकता। ये भगवान बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ऐसे नहीं है। यदि हम अपना यदि भगवान की भक्ति करेंगे तो भगवान की कृपा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापे विमोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान खुद करेंगे समस्त पापों का क्या करूंगा, मैं विनाश कर दूंगा। भगवान का नाम जप करने से सारे पाप नाश हो जाते हैं, तो ये सिद्धांत तो गलत है। फिर भगवान कह रहे हैं कि सब कुछ कर्म से ही होता है। इंद्र कोई देवता है? इंद्र की कोई सत्ता ही नहीं है। इंद्र क्या करते, जो अगर मनुष्य को अच्छा कर्म करता है उसको उसका फल मिलता है, तो इससे इंद्र का क्या लेना देना। इसलिए कर्म जो है उसी की पूजा करनी चाहिए। इस तरह से भगवान जो है कर्म मीमांसा सिद्धांत स्थापित करते हैं, लेकिन इसके पीछे उद्देश्य एक ही है कि वो जो ब्रजवासी लोग हैं वे लोग वो सब इंद्र की पूजा छोड़ के गोवर्धन की पूजा करें। तब सारे लोग भगवान से पूछने लग गए, अब फिर कृष्ण करना क्या चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। सारे लोगों ने पूछा, किसकी पूजा करने की तुम बात कर रहे हो? अगर तुम कह रहे हो कि इंद्र की पूजा नहीं करनी चाहिए, इंद्र हमें कुछ नहीं देता है, सब कुछ हमारे कर्मों के द्वारा ही प्राप्त होता है, तो किसकी पूजा करें कृष्ण, किसकी पूजा करनी चाहिए? तो भगवान ने कहा गोवर्धन की, ब्राह्मणों की और गौओं की। भगवान ने तीन चीज कही, गोवर्धन, क्योंकि गोवर्धन से जो झरने निकलते हैं उन झरनों में हम लोग पानी पीते हैं, हमारी गौवें पानी पीती है, हमारी गौवें गोवर्धन गोवर्धन पर ही क्या करती है, चारा खाती है, गोवर्धन में हमें औषधियां मिलती है, वनौषधि मिलती है, गोवर्धन में हमें फल फूल सब मिलते हैं, तो गोवर्धन ही हमारे इष्ट है, ब्राह्मण हमारे इष्ट है, ब्राह्मण स्वाभाविक गुरु होते हैं, इसके ब्राह्मण हमारे इष्ट है, और गौ गौ से हमारा हम कृषि हम वैश्य लोगों का हम वैश्य लोगों का वैश्य लोगों की आजीविका यही है। तो इसलिए ये तीन हमारे इष्ट देव हैं, ना कि इंद्र। इंद्र कौन है, इंद्र का क्या हमारे जीवन में रोल है, कुछ नहीं है। ये तीन जो चीजें थी प्रकट थी सामने, ब्रजवासी लोग देख रहे थे, जान रहे थे। लेकिन इतना सब समझाने के बाद भगवान ने बहुत अच्छा से इन लोगों को समझाया, और अंत में भगवान ने कुछ चीजें कही। भगवान ने कहा कि मैं चाहता हूँ आप लोग, ये जो इंद्र के लिए जो इतनी बड़ी तैयारी चल रही थी, बहुत बड़ी तैयारी चल रही थी, बहुत प्रचंड मात्रा में पूरिया बनाई जा रही थी, बहुत प्रचंड मात्रा में मालपुआ बना जा रहा था, बहुत प्रचंड मात्रा में दाल सब्जी प्रचंड प्रचंड मात्रा में बनाया जा रहा था, तैयारी चल रही थी वहां पर। और भगवान कहते हैं कि स्पेशल कुछ करने की आवश्यकता नहीं है गोवर्धन पूजा के लिए, ये जो सारा इंद्र के यज्ञ की सामग्री है, इसी को लेकर हमें गोवर्धन चलते हैं, गोवर्धन के पास चलते हैं इसी को लेकर। और ये सारा सामग्री लेकर ही हम लोग इंद्र की पूजा करेंगे। और भगवान कह रहे थे कि और भगवान और उनका अच्छे से मार्गदर्शन करते हैं, कि भगवान कहते मुझे क्या क्या चाहिए, मुझे चाहिए मालपुआ चाहिए, पूरी चाहिए, सब्जियां चाहिए, इस इतनी बहुत प्रकार की सब्जियों का वर्णन है कि मुझे इतने प्रकार की सब्जी चाहिए, इतने प्रकार की खीर चाहिए, इतने प्रकार की क्या कहते हैं पूरियां चाहिए, कचौरी चाहिए, इस तरह से भगवान विविध प्रकार के वर्णन करते हैं। और कहते हैं कि सब लोग सज धज कर, सारे घरों की स्त्रियां सज धज कर आए, पहले तो ब्राह्मणों की पूजा की जाए, फिर गौ माता की पूजा की जाए, तो जितने सारे कुत्ते बिल्ली जितने सारे जानवर हैं हमारे ब्रज में, उन सबको यथा उनका यथोचित सत्कार किया जाए, मतलब जो जो उनको चाहिए वो दिया जाए, और फिर उसके बाद गिरिराज गोवर्धन को भोग लगाया जाए। ये सब चीजें मैं चाहता हूँ, इससे गिरिराज गोवर्धन भी प्रसन्न होंगे, गौ भी प्रसन्न होंगे, और ब्राह्मण भी प्रसन्न होंगे, और सबसे बढ़कर मैं प्रसन्न होंगे। तो जब सारे ब्रजवासियों ने सुना कि ये कार्य करने से भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे, तब इतना सुनते ही कि ये कार्य करने से मैं प्रसन्न होऊंगा, इतना सुनते ही ब्रजवासियों ने विचार किया अब क्या इंद्र की पूजा करनी है। अगर ये सारा कार्य करने से कृष्ण ही प्रसन्न नहीं होते हैं, इंद्र की पूजा करने से कृष्ण प्रसन्न नहीं होते हैं, तो इंद्र पूजा क्यों की जाए। देखिए कृष्ण उन सारे ब्रजवासियों के प्रांत है, सोते जाते उठते बैठते केवल कृष्ण की ही वहां पर चर्चा होती है, वो वृंदावन है, ब्रज है, वहां पर कृष्ण उनके प्राण है, कृष्ण के अलावा जी नहीं सकते वो। बहुत करोड़ों जन्मों की भक्ति का उदय होता है तब किसी को, और प्रेम भगवान का प्रेम प्राप्त करने के बाद ब्रज भगवान की लीला में जाने का अवसर प्राप्त होता है। जीव हम जैसे साधारण लोग यदि भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं तो उसको भगवान की भोग लीला में जाने का अवसर मिलता है, और भोग लीला में ब्रजवासियों के बीच में जैसे हमारा जन्म, देखिए हम लोग भगवान के धाम कैसे जाते हैं, जीव भगवान के धाम कैसे जाता है, यदि मान लीजिए कि हमें भगवान की लीला में प्रवेश कैसे मिलेगा, यदि हम इस जन्म में भगवान के गुण रूप लीला आदि का श्रवण करेंगे, अच्छे से उनके श्रवण करेंगे, तो उनके श्रवण कीर्तन से हमारे हृदय में प्रेम उदित होगा, वो प्रेम उदित होने के बाद हमारा शरीर छूटेगा, शरीर छूटने के बाद भगवान या गुरु महाराज और भगवान की कृपा से हमें भगवान की अन्य किसी ब्रह्मांड में जो भोग लीला चल रही है ना, जैसे भगवान ने इस ब्रह्मांड में जो लीला की थी 5000 साल पूर्व, वैसी जो लीला चल रही है, तो हमें उस लीला में जाने का अवसर प्राप्त होता है, उस लीला में हमारा जन्म होगा, किसी गोपी के गर्भ से हमारा जन्म होगा और वहां पर हम लोग अन्य ब्रजवासियों के साथ मिलकर हमारी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग मतलब हम लोग सीखेंगे किस तरह से कृष्ण की सेवा की जाती है, कैसे कृष्ण से लोग प्रेम करते। तो ब्रजवासियों के साथ रहते रहते हमारी ट्रेनिंग जैसी होगी। जैसे मंदिरों में जो नए ब्रह्मचारी होते हैं, जो नए नए लोग जुड़ते हैं, उनको एक न्यू भक्ता ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो लोग कुछ समय तक पीले वस्त्र में लोग रहते हैं, एक साल के लिए पीले वस्त्र में रहते। तो वे लोग मंदिरों के जो निवासी भक्त हैं उनके अंदर में रह के ट्रेनिंग लेते हैं। उसी तरह से हम लोग भगवान की लीला में ब्रजवासियों के अंडर ट्रेंड होते हैं और भगवान कृष्ण की सेवा करते हैं। उसके बाद हम लोग भगवान के नित्य लीला गोलोक वृंदावन में प्रवेश करते हैं, उसके बाद प्रवेश होता है। ऐसे उसमें और उसमें कुछ खास अंतर नहीं है, उसमें जाना मतलब परफेक्शन ही है। वो जब सबने ये सुना कि भगवान कृष्ण इस कार्य से प्रसन्न होंगे, तब उन्होंने इंद्र को प्रसन्न करने का जो अपना जो भी था, उन्होंने कहा ठीक है, अगर कृष्ण इस कार्य से प्रसन्न हो रहे हैं तो हमें यही कार्य करेंगे। तो सब लोगों ने कहा ठीक है। तो सब लोगों ने अपना सारा जो इंद्र यज्ञ के लिए जो तैयारी की गई थी, सारी तैयारी को लेकर सब लोग कहाँ पहुंचे? गोवर्धन पहुंचे। और गोवर्धन में उन्होंने सर्वप्रथम ब्राह्मणों के माध्यम से स्वस्ति वाचन करवाया। उसके बाद ब्राह्मणों से यज्ञ करवाया, बड़े बड़े यज्ञ होने लग गए। भगवान ने सबको समझाया था। अब एक बहुत ही अद्भुत बात चल रही थी। श्रीधर स्वामी बताते हैं कि जब खाना बन रहा था, जब ये सब तैयारी चल रही थी, भगवान ने अपने आप को अनंत रूपों में विस्तारित किया था और वो सारा कार्य संभाल रहे थे। जब गोवर्धन के लिए भोग बन रहा था तो भगवान ने अपने आप को भगवान पर्सनली ध्यान दे रहे थे। जहाँ पे पूरी बन रही है, जहाँ पे मार्ग बन रहे, ऐसे तो कई सारे पदार्थ गिरिराज गोवर्धन के लिए बन रहे थे ना। तो भगवान अपने आप को विस्तार करके हर एक ग्रुप में जाकर विस्तारित हुए थे। सब सारे कार्य पर ध्यान दे रहे थे कि सब ठीक चल रहा है कि नहीं। उसके बाद उन्होंने सारा कार्य जब वहां पर पहुंचे तो ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन कराकर, ब्राह्मणों का यज्ञ करवाकर उन्होंने गौओं की पूजा की। और फिर वही गौवे ब्राह्मणों को कुछ गौवे दान की, ब्राह्मणों को धन दिया, ब्राह्मणों को स्वर्ण दिया, इस तरह से ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। उसके बाद उन्होंने जितने सारे, जैसे भगवान ने जैसे बताया था कि वहां पर जितने सारे जो जानवर इत्यादि है, ब्रज के जितने सारे जानवर थे, सब लोगों को उन्होंने यथा योग्य खिलाया पिलाया, संतुष्ट किया, गौओं की भी अच्छे से पूजा की। उसके बाद उन लोगों ने भगवान के आदेशानुसार उन्होंने गिरिराज गोवर्धन को भोग लगा दिया। और जब गिरिराज गोवर्धन को भोग लगा दिया तब एक बड़ी आश्चर्यचकित घटना घट गई। गिरिराज के ऊपर अभी सबके साथ तो कृष्ण थे, लेकिन गिरिराज के ऊपर बड़े कृष्ण पहाड़ जैसे कृष्ण वहां पर प्रकट हो गए। और सब लोग आपस में मिलने लगे, अरे तो कृष्ण है, अरे तो कृष्ण है, अरे नहीं कृष्ण नहीं, तो गिरिराज जी, अरे गिरिराज जी देवता आ गया, खाने के लिए आ गया। तो जैसे इस तरह से आपस में खुशी का माहौल हो गया, कोई देवता प्रकट हो गया। आज तक इतने सालों से हम लोग इंद्र की पूजा कर रहे, एक बार इंद्र नहीं आया और एक बार गिरिराज जी की एक ही बार पूजा कर गए, इंद्र प्रकट, ये देवता प्रकट, गिरिराज जी प्रकट हो गए। अब गिरिराज जी ने अपने हजारों हाथ बाहर निकाले और गिरिराज जी जब खाने लग गए, सब कृष्ण ही थे, कृष्ण ही खा रहे थे, सबको दिख रहा था कृष्ण जैसी शक्ल थी, सब कुछ कृष्ण जैसे, लेकिन यहाँ पे गिरिराज जी के हजारों हाथ थे और सब खा रहे, जितना सारा लगाया था सब खा रहे। और गिरिराज जी बोलने लगे, अन्योर और लाओ। तो जब गिरिराज जी ने मांगा और लाओ, तो सब लोग फिर बनाने लग गए। तो सारे ब्रज में जितने सारे ब्रजवासी लोग थे, सब जगह अपने अपने घरों में लोग खाना बनाने लग गए। कि जब खबर पहुंच गई गिरिराज जी खा रहे हैं, तो सबने अपने अपने घरों में भोग बनाया और ऐसे खड़े हो जाते थे। तो गिरिराज जी अपना हाथ लाकर उस भोग को ले लेते थे, तो ये और बनाते थे। गिरिराज जी मांगते जा रहे थे, भक्त लोग बनाते जा रहे थे। मान लीजिए अगर भगवान कभी कभी लोग जो मायावादी लोग रहते हैं, वे लोग कहते हैं कि आप लोग क्या भगवान को भोग लगाते, भगवान खाते हैं? भगवान निश्चित खाते हैं। और जब तो बोलते हैं कि कुछ लोगों की धारणा रहती है कि अगर भगवान सच में खा लेंगे तो हम लोग कभी भोग नहीं लगाएंगे, मतलब खत्म हो जाएगा तो हम लोग कभी भोग नहीं लगाएंगे। तो कुछ आचार्य टीका कहते हैं ऐसा नहीं है, अगर भगवान खाने लग गए तो भक्त लोग और खिलाएंगे। तो यहाँ पर एक कॉम्पिटिशन लग गया, गिरिराज जी खाते जा रहे हैं और भक्त लोग बनाते जा रहे हैं। जहां जहां गिर सारे घरों में लोग उत्साह के साथ एक अन्नकूट महोत्सव चल रहा था, सब लोग बना बना के गिरिराज को खिला दे, गिरिराज अपना हाथ आगे करके खा रहे थे। इस तरह से गिरिराज जी खा रहे और उसके बाद जब गिरिराज जी संतुष्ट हो गए तब गिरिराज जी ने सब कुछ लौटा दिया। ऐसा नहीं कि गिरिराज जी ने सब खा, गिरिराज जी ने सब कुछ अपने भक्तों को प्रसाद के रूप में सब लौटा दिया। तो भगवान को भी जो हम लोग भोग लगाते हैं तो भगवान उसको, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान नहीं खाते, भगवान भी खाते हैं उस चीज को और हमें हम भक्तों के लिए अपना उच्चिष्ट लौटा देते हैं। भगवान सच्चिदानंद है, देखिए हम लोग हमारी इंद्रिया दूषित है, हम लोग भगवान को देख नहीं सकते। अरे आकाश में उड़ता हुआ प्लेन हम देख नहीं सकते, थोड़ा समय के लिए अगर प्लेन तो आकाश में रहता है लेकिन हमारे सामने कुछ समय के लिए कि थोड़े समय के लिए बादलों में घुस जाएगा तो हमें वो दिखाई नहीं देता। ऐसे कई सारी चीजें हमारी जो इंद्रियों पकड़ नहीं पाती, दूषित इंद्रिया है, कमजोर इंद्रिया है, लेकिन उन कमजोर इंद्रियों से हम लोग भगवान को भी नहीं देख पाते। लेकिन भगवान ऐसे नहीं, भगवान दयालु है, भगवान कृपा करके हम लोगों के सामने अर्चन विग्रह के रूप में प्रकट है। क्यों प्रकट है? हमारी सेवा को स्वीकार करने के लिए, हमारी प्रार्थनाओं को स्वीकार करने के लिए, हमारी भक्ति में सहायता करने के लिए भगवान अर्चन विग्रह के रूप में प्रकट है। तो इसलिए हमारी सेवा को स्वीकार करते हैं, हम आरती करते हैं और हमारी सेवा करते 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 हमारा जो इंद्रिया वो शुद्ध हो जाती है। और ये जो सेवा हम लोग करते हैं यही सेवा भगवान की लीला में, हमारे ये शरीर छूटने के बाद यही सेवा हमारी उनके साथ ही कंटिन्यू होती है। भगवान को रोज सुबह उठाना, उनको खिलाना पिलाना, उनको सुलाना, भगवान को कपड़े पहनाना, इससे भगवान को अच्छा लगता है। वही चीज स्वीकार करने के लिए भगवान हमारे भगवान अर्चन विग्रह के रूप में प्रकट है। और भगवान खाते कैसे? भगवान अपने आंखों से खाते हैं और अपने भक्तों के लिए छोड़ देते, प्रसाद छोड़ देते, ताकि उस प्रसाद को ग्रहण करके हमारी इंद्रिया, हमारी जो इंद्रिया दूषित इंद्रिया वो शुद्ध हो जाए। हमारा जो मन है जो दूषित इंद्रिय भोग करने के कारण जो दूषित हो गया है, मलिन हो गया है, जिसमें भगवान को जो मन भगवान को पकड़ नहीं सकता, वो भगवान का प्रसाद खा के भगवान का नाम जप करके उसको पकड़ने लगता है, भगवान की स्मृति होने लगती है। ये भगवान की सेवा करने का ही फल है ये। तो उसके बाद भगवान सबको संबोधित करते हैं, कहते हैं कि देखिए गिरिराज जी कितने बड़े कितने कृपालु हैं, साक्षात गिरिराज जी हम लोगों पर दया करें, कृपा करें, हमारे सामने प्रकट हुए हैं। तो चलिए सब लोग इनको मिलकर प्रणाम करते हैं। तो सब ने गिरिराज जी को, भगवान ने स्वयं आचरण अपने द्वारा आचरण दिखाने के लिए सब लोग ने भगवान ने भी प्रणाम किया गिरिराज जी को। और फिर भगवान ने कहा अब गिरिराज जी की सब लोग परिक्रमा करते हैं। तो सब लोगों ने अपने गवों को आगे रखते हुए, स्त्रियों को और बच्चों को बैलगाड़ी में बिठाकर सब लोगों ने गिरिराज जी की फर्स्ट परिक्रमा की, भगवान ने स्थापित शुरू किया। तो आज भी हम लोग गोवर्धन पूजा करते हैं, गिरिराज जी की परिक्रमा करते हैं, वो किस लिए करते थे कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा यह स्थापित है। तब आज भी गिरिराज जी जो है वो साक्षात श्री कृष्ण है, एक एक शिला जो उसमें है वो साक्षात कृष्ण है, उसमें एक एक कण, गिरिराज जी पर एक एक कण भी है ना, वो साक्षात श्री कृष्ण है, वो कोई साधारण पर्वत नहीं है, वो साक्षात कृष्ण है, वो एक एक कण उस पर कृष्ण है। इसलिए हम लोग कुछ भक्त लोग रहते हैं वो गिरिराज जी की शिला लाकर उनकी पूजा करते हैं, तो वो भी डीटी वर्शिप के जैसे ही है वो। तो गिरिराज जी के, 2 मिनट में समाप्त कर दूंगा, गिरिराज जी के दो तरह से पूजा होती भक्तों के बीच में, एक तो भगवान के रूप में है जैसे गिरिराज जी साक्षात कृष्ण है, और दूसरा हरिदास वर्य के रूप में। हरिदास वर्य का अर्थ है कृष्ण के दास के रूप में। राधा रानी गोपी गीत में यह वर्णन करती है कि तीन प्रकार के हरिदास हैं भागवत में। एक है महाराज युधिष्ठिर जिनको हरिदास कहा गया है कि समस्त समस्त हरिदासों में वो श्रेष्ठ है, कौन? युधिष्ठिर महाराज। उनके जैसे जुनून, जैसे उनका समर्पण है कृष्ण के प्रति, जिनकी जिनका उनकी सेवा भाव है उनका और किसी का नहीं है। दूसरे हरिदास है उद्धव जी महाराज, उद्धव जी भी सर्वश्रेष्ठ भक्तों में आते हैं। लेकिन राधा रानी कहती है कि ये जो गिरिराज जी है ना, ये हरिदास वर्य है, अर्थात हरिदासों में ये सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि इस गिरिराज जी ने अपना सब कुछ कृष्ण में लगा दिया है। जब ठंडी होती है ब्रज में तो भगवान श्री कृष्ण की जो गुफाएं है वो हीटर जैसा काम करती है, और इनकी जो शिरा है वो गर्म हो जाती है। तो गिरिराज जी पर भगवान या उनके सारे ग्वालबाल या गोपियों के साथ जब भगवान आते हैं तो गिरिराज जी गर्म हो जाते हैं ठंडी के दिनों में, और ठंडी के और गर्मी के दिनों में गिरिराज जी ठंडक देते हैं, और भगवान की विविध लीलाओं को पूर्ण करने के लिए गिरिराज जी अपनी गुफाओं में भगवान के लिए विविध प्रकार के सोने बैठने के स्थान और विविध प्रकार के लीलाओं के लिए गिरिराज स्वयं तैयारी करते हैं। इसलिए राधा रानी का ये भाव है, राधा रानी कहती कि जो गिरिराज जी है ये साक्षात हरिदास वर्य है, समस्त हरिदासों में ये सर्वश्रेष्ठ है। तो ऐसे हरिदास वर्य गिरि गोवर्धन के चरणों में हमारा साक्षात करना। तो आज यही तक हम लोग रुकते हैं, कल हम लोग इंद्र ये सब ये जो पूजा पूजा ये जो पूजा चल रही है ब्रज में इसको इंद्र देखता है। इंद्र अपने दूतों को भेजता है कि देखने के लिए कि ये सारी जो पूजा चल रही है, इंद्र अपने जो देवता है उनको भेजता है कि देखने के लिए क्या क्या हो रहा है ब्रज में, हर साल मेरी पूजा हो रही है, इस बार कैसे पूजा हो रही है मेरी। तो सारे जो देवता होते हैं वे इस सारी घटनाओं को देखते रहते हैं, और वो जाकर कृष्ण की कंप्लेन करते हैं इंद्र को, और इंद्र क्रोधित हो जाता है। उसके बाद वो क्या क्या कांड करता है और ब्रजवासियों किस तरह से परेशान करता है और भगवान उसका तोड़ कैसे निकालते हैं, ये सब हम कल चर्चा करेंगे।
हरि बोल।